أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. پیارے دوستوں، السلام علیکم. ہم اپنے آج کے پروگرام میں اپنی پچھلی بحث کو آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے کاریہ کرم میں جو بات آرمبھ کی تھی وہ سجدے کے سمبندھ میں تھی. ہم نے سجدے کے سمبندھ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، انہی باتوں کو ہم آج آپ کے سامنے آگے بڑھائیں گے. اور ہمارا پریتن یہ ہوگا کہ وہ مسئلے جو سجدے سے سمبندھت باقی رہ گئے تھے، ان کو ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں. تو سب سے پہلی بات جو ہم آج اپنے پروگرام میں سجدے کے سمبندھ میں کہہ سکتے ہیں وہ ہے ذکر، یعنی سجدے میں کیا پڑھا جائے. جیسا کہ ہم نے رکوع کے سمبندھ میں بتائی تھی، آج سجدے کے سمبندھ میں ہم ذکر کے بارے میں بات چیت کریں گے. ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں انسان کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے، کوئی وشیش ذکر سجدے کے لیے مخصوص نہیں ہے. ضروری نہیں کہ کوئی خاص ذکر پڑھا جائے، لیکن جو بھی ذکر پڑھ رہا ہے کم سے کم 3 بار سبحان اللہ یا 1 بار سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھا جائے. یہ سجدے کے ذکر کی کم سے کم مقدار ہے. اس کے علاوہ ایک نمازی جو بھی ذکر پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس سے اس کی نماز کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں آئے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. دوسری بات جو یہ ہے، جس سمے انسان سجدے میں ہے اور ذکر پڑھ رہا ہے، اس سمے اس کے شریر کی استھتی کیا ہونا چاہیے، یہ ایک پرشن ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جس سمے انسان سجدے میں ہے اور واجب ذکر پڑھ رہا ہے، واجب ذکر کا کیا مطلب ہے، یعنی کم سے کم 3 بار سبحان اللہ یا 1 بار سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا شریر اس استھتی میں ہو کہ ٹھہرا ہوا ہو، یعنی ہل ڈل نہ رہو. جس سمے سجدے میں گیا، شریر جب ٹھہر جائے تب وہ یہ چیز پڑھے. اور اس کے بعد اگر مستحب ذکر پڑھنا چاہتا ہے، جیسے اس کے بعد صلوات پڑھنا چاہتا ہے یا ذکر کو اور بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہم سجدے کے ذکر کے عنوان سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی لازم یہ ہے کہ سجدے میں انسان کا شریر ٹھہرا ہوا ہو، تب یہ مستحب ذکروں کو پڑھے اور انجام دے. اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ انسان سجدے میں پہنچنے سے پہلے ذکر شروع کر دے، ابھی اس سے پہلے کہ سجدے میں پہنچا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہنا آرمبھ کر دے، یا سجدے میں تو پہنچ گیا تھا ابھی شریر ٹھہرا نہیں تھا اور شروع کر دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ذکر اس نے جان بوجھ کے پڑھنا شروع کر دیا تھا اس سے پہلے کہ سجدے میں پہنچے، یا سجدے میں پہنچنے کے بعد شریر ٹھہرے اس نے شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. لیکن اگر بھول گیا تھا، یعنی اس کو دھیان نہیں رہا یا بھول گیا، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ سجدے میں پہنچ جائے، یا سجدے میں پہنچنے کے بعد اس کا شریر جب ٹھہر جائے تو دوبارہ اس کو پڑھے. یعنی اگر پہلے شروع کر دیا تھا تو وہ شروع کیا ہوا مان نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ سجدے میں جانے کے بعد یا دوبارہ شریر کے ٹھہرنے کے بعد پھر سے اس ذکر کو پڑھنا ہوگا اور اس ذکر کو سماپت کرنا ہوگا. اس کے بعد جو بات آتی ہے سجدے کے سمبندھ میں، وہ یہ ہے کہ جس سمے سجدے میں ہمارا ماتھا ہماری پیشانی رکھی جا رہی، تو اس استھان کی سچویشن کیا ہونا چاہیے، اس استھان کی استھتی کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ جس استھان پر ایک نمازی سجدہ کر رہا ہے، اس کے لیے انیوار یہ ہے کہ زانو جہاں پر جس استھان پر اس کا پڑتا ہے نمازی کا، اس زانو کے استھان سے سجدے کا استھان 4 ملی ہوئی انگلیوں سے اوپر یا 4 ملی ہوئی انگلیوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اور یہیں پر اس کے بعد بھی ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ जहाँ पर एक नमाजी के पैरों की उंगलियां हैं, यानी जो स्थान नमाजी के पैरों की उंगलियों का है, उसके बारे में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे भी हमारे सजदे का स्थान चार उंगलियां मिली हुई चार उंगलियों से ऊपर या चार उंगलियों से नीचे ना हो। ये एहतियाती वाजिब है, इसका ध्यान रखना एक नमाजी के ऊपर अनिवार्य है और ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो मसला आता है वो ये है कि जब इंसान सजदे में चला गया, सजदे में जिक्र कर लिया, उसके बाद सजदे से उठने का नौबत आती है। सजदे से उठते समय इंसान की स्थिति क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे फुकहा ने मसाइल बयान किए, जिसको हम आपके सामने अभी बयान करते हैं। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं, और नमाज का तरीक़ा भी ये है कि जिस समय इंसान पहले सजदे में गया है और सजदे का जिक्र तमाम हो गया है, पढ़ चुका पूरा जिक्र, तो उठे, उठ के बैठे और उस मिकदार भर बैठे, उस मात्रा भर बैठे कि उसका शरीर ठहर जाए। उसका शरीर जब ठहर जाता है तो उसके बाद फिर इंसान दूसरे सजदे में जाए, यानी पहले ठहरना अनिवार्य है, उसके बाद दूसरे सजदे में जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर यह अनिवार्य नहीं कि कोई जिक्र वहाँ पर पढ़े या ना पढ़े, ये अनिवार्य नहीं, लेकिन ठहरना बहरहाल एक सजदे के बाद दूसरे सजदे में जाने से पहले ठहरना एक नमाजी के लिए अनिवार्य है। अगर इंसान जिक्र सजदे के जिक्र को समाप्त होने से पहले जानबूझकर सजदे से सर उठा ले तो क्या आदेश है? जैसे कि हमने बताया था पिछले अपने मसले में कि जिस समय इंसान जिक्र पढ़ रहा है उस समय इंसान का सर सजदे के अंदर होना अनिवार्य है या ठहरा होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर इंसान सजदे में पहुँचा है, जिक्र पढ़ रहा है, अब इससे पहले के जिक्र उसका समाप्त हो, उससे इंसान से सजदे से सर अपना उठा दिया है, तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं अगर उसने ये सजदे से सर जानबूझ के उठा दिया है तो उसकी नमाज बातिल है और उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। उसके बाद जब चूंकि हमने जानबूझ के बाद बता दी, तो कभी कभी अगर ऐसा हो जाए किसी, यहाँ पर एक मसला ये भी हो सकता है कि अगर किसी नमाजी के साथ ऐसा हो जाए कि बेअख्तियार उसका सर सजदे से उठ जाए तो क्या करेगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा एक बात कहते हैं, वो ये है कि अगर कोई नमाजी सजदे में सर रखे और बेअख्तियार सर उठ जाए, तो अगर वो अपने सर को दोबारा सजदेगाह पर रखने से रोक सकता है तो रोक ले, और उसका वो एक सजदा माना जाएगा, भले उसने कोई जिक्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। लेकिन अगर वो उसका सर बेअख्तियार उठा और वो रोक नहीं सकता था, दोबारा सजदेगाह के ऊपर उसका सर चला गया, तो इसके बारे में क्या आदेश है? तो यहाँ पर भी हमारे फुकहा ये कहते हैं अगर दोबारा बेअख्तियार सजदेगाह के ऊपर उसका सर चला गया है तो इसको भी दोनों मिला के एक सजदा माना जाएगा, और उसके बाद उसको चाहिए कि बैठे और बैठ के दोबारा सजदा करे, और इस प्रकार उसके दो सजदे होंगे और उसके बाद अपनी पूरी नमाज को आगे बढ़ाए। यानी अगर रोक सकता है तो रोक ले सजदे में सर जाने से, अगर नहीं रोक सकता है, बेअख्तियार दोबारा पहुंच जाता है, तो उसको एक ही सजदा माना जाएगा, उसके दो सजदे नहीं माने जाएंगे, और उसको जाने के बाद उसमें उसका जिक्र पढ़ना होगा, उसके बाद अपनी नमाज को आगे बढ़ाना होगा। तो ये वो मसले थे जो सजदे में शरीर की स्थिति के बारे में थे कि शरीर की स्थिति क्या हो, माथे की स्थिति क्या हो, हमारा शरीर हिलडुल रहा हो या न हिलडुल रहा हो, इस प्रकार के वो मसले थे जो हमने आपके सामने अभी बयान किए। उसके बाद जो मसाइल पेश आते हैं सजदे के संबंध में, वो ये हैं कि अगर सजदा इंसान भूल जाए तो उसके बारे में क्या करे, उसके बारे में मसले क्या हैं। तो सजदे की भूलने की स्थिति जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, यानी सजदा न करने की स्थिति दो प्रकार की हो सकती है, यानी अगर इंसान किसी नमाज में सजदा नहीं करता है तो ये स्थिति दो प्रकार से हो सकती, या तो ये कि उसने जानबूझ के सजदा नहीं किया है, या ये कि वो सजदा भूल गया है। अगर जानबूझ के सजदा नहीं किया है तो उसकी नमाज़ बातिल है, सब फुकहा यही कहते हैं, उसकी नमाज़ बातिल है और उसको दोबारा नमाज़ पढ़नी होगी। दूसरी बात जो आती है वो ये कि इंसान सजदा करना भूल गया, कोई कारण था जिसकी वजह से ध्यान नहीं रहा, उसको सजदा नहीं कर पाया, भूल गया सजदा करना, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं अगर एक ही रकत में दो सजदे ज़्यादा कर दे या एक ही रकत में दो सजदे कम कर दे, यानी दो, या मसलन नमाज इस तरह पढ़ी कि दो सजदे एक ही रकत में भूल गया, नहीं पढ़ा उसने, या एक रकत में चार सजदे कर लिए, तो हमारे फुकहा यह कहते हैं कि अगर एक ही रकत में दो सजदे बढ़ जाएं या एक ही रकत में दो सजदे कम हो जाएं तो उस नमाजी की नमाज बातिल है, उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। लेकिन उसके बाद नौबत आती एक सजदे की, अगर एक सजदा कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या है? यहाँ पर फुकहा ने बयान किया है, वो कहते हैं अगर किसी नमाजी की नमाज में एक सजदा अधिक हो जाता है, एक सजदा बढ़ जाता है। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि यहाँ पर उसकी नमाज सही होगी, उसकी नमाज में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उसके बाद मसला आता है कि अगर एक सजदा करना भूल जाए, एक सजदा नमाज़ें कम हो जाए, नमाज़ पढ़ना शुरू किया कि हर रकात में दो सजदे करने होते, एक ही सजदा कर पाया, एक सजदा भूल गया, तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर मसले थोड़े से विभिन्न प्रकार के हैं, थोड़े से इसकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। कि अगर इंसान अपनी नमाज में एक सजदा भूल जाए तो उसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि उस सजदा करना भूल गया, खड़ा हो गया नमाज अगली रकात पढ़ने के लिए। अब अगर अगली रकात पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, रुकू में पहुँचने से पहले उसको याद आ गया है, यानी अलहम्द पढ़ा, दूसरा सूरा पढ़ा, और उसके बाद उसको याद आ गया इस बात को कि उसने सजदा नहीं किया था रुकू में पहुँचने से पहले। अगर रुकू में पहुँचने से पहले उसको याद आ जाता है कि सजदा नहीं किया था, तो उसको चाहिए फ़ौरन बैठ जाए, फ़ौरन बैठने के बाद और सजदा करे, सजदा करने के बाद दोबारा खड़ा हो और फिर वहीं से शुरू करें। यानी ऐसा नहीं कि रुकू में चला जाए, बल्कि हम्द पढ़े, सूरा पढ़े, रुकू पढ़े, यानी पूरी नमाज जिस तरतीब से, जिस क्रम अनुसार होती, उसी अनुसार अपनी नमाज को आगे बढ़ाए और उसकी नमाज सही होगी, और यहाँ पर उसको सजदे सहो करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सिचुएशन हो गई, ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये हुई कि इंसान एक सजदे को भूल गया, उसको याद भी आता है, लेकिन याद कब आता है? जब वो दूसरी रकत का रुकू कर चुका होता है उसके बाद याद आता है, या रुकू में पहुंच चुका है तब याद आता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? तो हमारे फुकहा यहाँ कहते हैं कि अगर इस प्रकार रुकू में पहुँचने के बाद या रुकू करने के बाद इंसान को याद आता है, तो उसको चाहिए कि अपनी नमाज को आगे बढ़ा दे उसी प्रकार, यानी फिर पलट नहीं सकता सजदे की तरफ, बल्कि आगे बढ़ाता चला जाए और उसकी नमाज सही होगी। लेकिन जब नमाज समाप्त हो जाए, तो उसके बाद, नमाज समाप्त होने के बाद उसको चाहिए कि वो अपने सजदे का जो सजदा छूट चुका था उसकी कज़ा करे और उसके बदले में दो सजदे सहो करे। तो ये दो मसले हैं, यानी दो सिचुएशन अलग अलग प्रकार की। एक तो सिचुएशन ये हुई, एक स्थिति ये हुई कि इंसान को सजदा भूला हुआ सजदा याद आता है, लेकिन रुकू से पहले याद आ जाता है, तो उसको चाहिए सजदा कर ले और नमाज समाप्त करे। दूसरी स्थिति यह है कि याद तो आता है, लेकिन उसको रुकू में पहुंचने के बाद या रुकू समाप्त करने के बाद याद आता है, तो उसको चाहिए कि वो नमाज को आगे बढ़ाए और उसके बाद सजदे की कज़ा करे और सजदे सहो करे। ये वो मसले हुए जब इंसान सजदे को नमाज में ज़्यादा या कम कर दे। उसके बाद जो मसाइल पेश आते हैं, वो इस सूरत में पेश आते हैं कि इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी कारणवश सही अवस्था में, सही स्थिति में जो इस्लाम ने बताई हैं, वो सजदा नहीं कर सकता है। कोई मुश्किल थी, कोई बीमारी थी, कोई कमज़ोरी थी, इस कारण नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या मसाइल हमारे फुकहा ने बयान किए हैं, और अगर हम तौज़ील मसाइल की तरफ़ देखें तो उसमें क्या मसाइल बयान किए गए हैं, उसके बारे में हम आपके सामने अभी कुछ मसाइल आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी भी कारणवश अगर कोई इंसान किसी भी कारणवश अपनी पेशानी को ज़मीन पर नहीं रख सकता है, तो उसको चाहिए कि वो जितनी मात्रा में झुक सकता है झुके। यानी अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा हुआ है झुक और सजदे में जाने के बाद पूरी तरीके से नहीं झुक सकता है, तो हमारे फुकहा कहते हैं जितनी मात्रा में झुक सकता है झुके, और उसके बाद जब नहीं झुक सकता है उसके बाद उसको चाहिए कि अपनी सजदेगाह को, वो चीज़ जिसके ऊपर सजदा करना चाहता है, उसको किसी ऊंची चीज़ पर रखे, जैसे तकिया या लकड़ी या किसी और चीज़ के ऊपर रखे जिससे वहाँ पर वो सजदा कर सके। तो किसी ऊंची चीज़ पर उसको रखे, उसके बाद उसके ऊपर सजदा करे, लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि भले ही वो सजदेगाह को ऊपर रख रहा है, लेकिन उसके शरीर के दूसरे अंग, यानी हथेलियाँ, घुटने और दोनों अंगूठे उसी स्थिति में होना चाहिए जैसे सजदे के बारे में बयान किए हैं। तो ये सजदे से संबंधित दो मसाइल थे जो हमने आपके सामने बयान किए। सजदे से संबंधित कुछ और मसले हैं जो हम आपके सामने अपने अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी को ईश्वर के बारगाह में छोड़ते हैं। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।